आशी ने अपनी तरफ से आज फिर कोशिश की थी कि वो अभिमान को शादी के लिए मना सके, लेकिन हमेशा की तरह अभिमान ने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया था। हर बार जब भी वो उसे इंसल्ट करके भेजता था तब वे दोनों अकेले होते थे, लेकिन आज अभिमन्यु और इशिका भी वहां थे। इस तरह इशिका और अभिमन्यु के सामने अभिमान के भला बुरा कहने पर आशी का ईगो हर्ट हुआ था। अब वो और इंतजार नहीं करना चाहती थी। अभिमान उसके सामने मजबूर हो जाए ये सोचकर आशी शाम के करीब अपने घर पहुंची। उसे पता था कि उस वक्त तक आशुतोष ऑफिस से घर आ चुके होते थे। पहले ही स्टडी रूम में आशुतोष और काजल के बीच बहस चल रही थी। काजल हर शाम आशुतोष के पास आकर इसी बात को लेकर मिन्नत करती थी कि वो अभिमान और आशिका की शादी के लिए मान जाए। काजल बस इतना चाहती थी कि आशुतोष अभिमान से बात करे और उसे अपने घर बुलाए, ताकि वे अपने आपसी मनमुटाव भूलकर एक ग्रैंड वेडिंग कर सकें। अब तक आशुतोष काफी नॉर्मल तरीके से प्यार से काजल को समझा रहा था, लेकिन आज उसके सब्र ने भी जवाब दे दिया था। वो सख्त आवाज में बोला, काजल, मैं पिछले दो दिनों से तुम्हें यही समझा रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू कि इस टॉपिक पर बहस करके अपनी और मेरी एनर्जी वेस्ट मत करो। बोल दिया ना कि मैं इस शादी के लिए नहीं मानने वाला हूँ। अगर तुमने मुझे ज्यादा फोर्स किया तो मैं अभी जाकर लॉयर से बात करके डिवोर्स पेपर तैयार करवा लूंगा। अब तक मैं आशी को वक्त दे रहा था, पर तुम इस तरह मुझसे रोज बहस करोगी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा वो कदम उठाने के लिए जिसके लिए ना तो तुम तैयार हो और ना ही आशी। जैसे ही आशुतोष ने अपनी बात खत्म की, उसकी नज़र स्टडी रूम के दरवाजे पर गई, जहां आशी बेहाल हालत में खड़ी हुई थी। उसे इस तरह देखकर आशुतोष का दिल एक पल के लिए रुक गया था। आशी जल्दी से दौड़ते हुए अंदर आई और आशुतोष के गले लग गई। वो रोते हुए बोली, पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शायद मैंने जिद पकड़ ली थी, मुझे अभिमान से तलाक ले लेना चाहिए। आशी का ये डिसीजन सुनकर आशुतोष और काजल हैरान रह गए थे। इतने सालों से वो आशुतोष को मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो अभिमान को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आज अचानक वो रोते हुए आकर अभिमान से तलाक लेने की बात कह रही थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? उस अभिमान राजवंश ने तुमसे कुछ कहा? आशुतोष ने तुरंत आशी से अलग होकर पूछा। उनके चेहरे के भाव काफी सख्त हो गए थे। उनकी बात का जवाब देने के बजाय आशी जोर जोर से रोने लगी थी। काजल ने आशी का हाथ पकड़ा और घबराई आवाज में कहा, बेटा जो बात है वो बताओ और इस तरह रोना बंद करो। किसी ने तुमसे कुछ कहा? क्या फिर से यज्ञ से तुम्हारी लड़ाई हो गई? काजल बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे बताओ किसने तुम्हारा दिल दुखाया है? पिछली बार मैंने यज्ञ को कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस बार अगर उसने ऐसा किया है तो मैं उसे माफ नहीं करने वाला। हद होती है, वो कोई बच्चा नहीं रहा जो तुमसे लड़ता रहता है। आशुतोष को यही लगा था कि पिछली बार की तरह यज्ञ और आशी के बीच कोई बहस हुई होगी। वो उनकी लड़ाई में कम ही बीच में बोलते थे, क्योंकि अक्सर भाई बहनों में ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक लगी रहती थी। आशुतोष यज्ञ से बात करने के लिए वहां से बाहर जाने लगे, लेकिन आशी ने उन्हें रोकने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया था। यज्ञ ने कुछ नहीं कहा पापा, आशी सुबकते हुए बोली। फिर कुछ पल रुककर उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं अभिमान से मिलने के लिए गई थी। जैसे ही आशी ने ये बताया कि वो अभिमान के पास गई थी, आशुतोष ने आशी का हाथ झटक दिया था और उनके चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव उभर आए थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि आशी अभिमान से मिलने के लिए जाए। आज तक उन्होंने उसकी हर जायज नाजायज मांग को पूरा किया था, लेकिन वो अभिमान और उसकी शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। रीजन सिंपल सा था, आज उनकी बेटी आशिका इस दुनिया में नहीं थी, तो उसका कारण अभिमान था। आशुतोष के बिगड़े हुए भाव देखकर आशी समझ गई थी, लेकिन उसे कैसे भी करके इस ड्रामा को कंटिन्यू करना था। उसने आशुतोष का हाथ वापस पकड़कर कहा, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हो, आपका गुस्सा भी सही है, आप मुझे डांटिए ताकि आगे से मैं उसके पास ना जाऊं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें तलाक ले लेना चाहिए। अचानक ऐसा क्या हो गया आशी जो तुम अभिमान से डिवोर्स चाहती हो? काजल ने हैरानी से पूछा। मैं अभिमान से बात करने के लिए ऑफिस गई थी तो वो किसी दूसरी लड़की के साथ था। वे दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और उसकी वजह से अभिमान ने मुझे बहुत बदतमीजी से बात की। आप जानते भी हो वो लड़की किसी वक्त में मेरी फ्रेंड रह चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि दोस्ती की आड़ में वो मुझे ही धोखा दे रही है और मेरे ही पति के साथ रिश्ता बनाने की सोच रही है। उसने जो किया सो किया, लेकिन उसके चलते अभिमान ने मुझसे भी बदतमीजी से बात की। आप ठीक कह रहे हो, मुझे अभिमान से तलाक ले लेना चाहिए। वो जो कर रहा है उसे करने देती हूँ। वैसे भी हमारी शादी से कोई खुश नहीं है, इतने साल से हम दोनों दूर हैं, इसका फायदा कभी ना कभी तो किसी को आकर उठाना ही था। आशी ने रोते हुए पूरी बात बता दी थी और फिर काजल के गले लग गई थी। उसने अपना चेहरा काजल के कंधे में छुपा लिया था। वो भले ही आशुतोष और काजल का चेहरा ना देख सके, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा।
दोनों के चेहरे पर ही मायूसी के भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे आशी अपनी नहीं उनकी कहानी सुना रही हो। काजल और आशुतोष की फैमिली दोनों ही उनकी शादी से खुश नहीं थी, पर उन्होंने अपने प्यार के चलते कोर्ट मैरिज की थी। अपनी फैमिली की वजह से कुछ वक्त के लिए काजल को आशुतोष से अलग होना पड़ा था, और इस बीच तृप्ति ने पूरी कोशिश की थी कि वो आशुतोष को बहका सके। ये बात अलग थी कि आशुतोष ने उसे उसकी जगह दिखा दी थी। उसने काजल की फैमिली को मनाया और उसे अपने पास ले आया था। जब तृप्ति ने आशुतोष और काजल के बीच आने की कोशिश की थी, तब काजल भी बहुत हर्ट हुई थी। उसकी आंखें अभी भी नम होने लगी थी। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, काजल ने आशुतोष का हाथ पकड़कर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मेरी लाइफ तो बर्बाद होने से बच गई आशु, क्योंकि तुम बहुत समझदार थे, हर सिचुएशन में मेरा साथ निभाते थे, कभी अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन क्या अपनी बेटी की जिंदगी तुम बर्बाद होने दोगे? छोड़ दो अपनी जिद को, हर इंसान आशुतोष सिन्हानिया नहीं हो सकता है। वो अभिमान राजवंश है, बचपन से ही वो बच्चा काफी जिद्दी और घमंडी रहा है। उसने कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं की, तो इस शादी की क्या रिस्पेक्ट करेगा? लेकिन मैं अपनी बेटी को घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती हूँ। मेरा दिल जानता है, जब मैंने आपकी फोटोज उसके साथ देखी थी तो मेरे दिल पर क्या बीती थी। आशुतोष ने उस वक्त जवाब देना सही नहीं समझा। उन्होंने आशी का हाथ सहलाया और कहा, तुम्हें इस वक्त आराम करने की जरूरत है, ज्यादा मत सोचो। आशी को यही लगा था कि इस बार उसके तीर निशाने पर जाकर लगे, लेकिन आशुतोष के ठंडे बर्ताव ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। आशी आगे कुछ कहना चाहती थी, पर आशुतोष ने काजल को इशारा किया ताकि वो उसे वहां से ले जाए। काजल भी आगे कुछ नहीं बोली। आशी के बात सुनने के बाद उसके जख्म भी हरे हो चुके थे। वो आशी को वहां से ले जा चुकी थी। वही स्काई इस वक्त एक होटल रूम में था और काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। उसके पास में उसका मैनेजर मार्क खड़ा था। मार्क बार बार किसी को कॉल कर रहा था, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था, और ये स्काई के गुस्से को बढ़ा रहा था। काफी कोशिशों के बाद सामने से कोई कॉल रिसीव हुआ और एक औरत की आवाज आई, मैं हॉस्पिटल आई हुई थी मिस्टर मार्क, इस वजह से आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपको इग्नोर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वो तृप्ति थी जो काफी बनावटी लहजे में बात कर रही थी।
मार्क ने मोबाइल स्काई के आगे कर दिया था। वो गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोला, जानकर अच्छा लगा कि अपने लिए पहले ही हॉस्पिटल में बेड बुक करवा रही हो। आई टेल यू तृप्ति, अगर मुझे आशिका नहीं मिली तो तुम्हें हमेशा के लिए वहीं शिफ्ट कर दूंगा। स्काई की गुस्से भरी आवाज और बातों को सुनकर तृप्ति समझ गई थी कि आशिका उन्हें धोखा देकर निकल चुकी है। वो इस वक्त स्पा में बैठी हुई थी। आशिका के भागने की खबर सुनते ही वो जल्दी से उठकर बैठ गई थी और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने आपको बताया तो था कि वो ऑस्ट्रेलिया अपने पति के पास गई है ताकि उससे तलाक ले सके, तृप्ति ने घबराते हुए कहा। समझ नहीं आता कि तुम खुद इतनी बेवकूफ हो या मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी बेटी धोखा देकर निकल गई है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, लेकिन उसने इंडिया के लिए कहीं की फ्लाइट ली है। बेहतर होगा कि तुम भी यहाँ आ जाओ और तुम्हारी बेटी को ढूंढने में मदद करो। एक महीने का टाइम दिया था मैंने तुम्हें और उसमें भी एक हफ्ता बीत चुका है। मुझे तुम लोगों पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। अब तो हर हाल में मैं तुम्हारी बेटी को उसके घुटनों पर लाकर रहूंगा और उसे उसके धोखे की सजा दूंगा। क्या तुम्हें कोई आइडिया है वो इंडिया में कहाँ हो सकती है, स्काई ने पूछा। उसके आदमियों को भले ही आशिका ने पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन स्काई को इस बात का पता चल चुका था कि आशिका ने इंडिया के लिए फ्लाइट ली है। स्काई को आशिका के मुंबई में होने के बारे में पता नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से वो वहीं पर पहुंचा था। वहीं दूसरी तरफ आशिका के इंडिया में होने की बात सुनकर तृप्ति के चेहरे का भी रंग उड़ गया था। उसने हमेशा यही कोशिश की थी कि वो आशिका को इंडिया से दूर रखे। मैं तुरंत वहां आती हूँ, आप मुझे बताइए आप कहाँ हैं, तृप्ति ने जल्दी से पूछा। मैं मुंबई में हूँ क्योंकि मेरी फैमिली यहीं है। वैसे तो मुझे उनसे मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सोच रहा हूँ अब यहाँ आ ही गया हूँ तो एक बार उनसे भी मिल लिया जाए, स्काई ने जवाब दिया। पहले तो आशिका की मुंबई में होने की बात सुनकर ही तृप्ति घबरा गई थी, लेकिन जब उसने मुंबई का नाम सुना तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। आखिर आशुतोष और काजल वहीं पर रहते थे। आशिका को चेहरे से भले ही वो ना पहचान पाए, लेकिन नाम और उन आँखों का वो कुछ नहीं कर सकती थी जो आशुतोष और यज्ञ जैसी लगती थी। मैं तुरंत टिकट बुक करवाती हूँ मिस्टर स्काई, डोंट वरी, हम उसे ढूंढ लेंगे। इस बार मैं भी आपके साथ हूँ और उसके ऊपर कोई रहम मत कीजिएगा, तृप्ति गुस्से में बोली। उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया था। तृप्ति की बात सुनकर स्काई और मार्क दोनों थोड़े हैरान हुए। स्काई ने मार्क की तरफ देखकर कंधे उठाकर कहा, क्या लगता है मार्क, क्या वो लड़की सच में इसकी बेकी है? लोन इसके पति ने लिया था, मैंने पता लगाया था कि वो लड़की काफी सालों से इससे दूर है और कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो तृप्ति ने अपनी ही बेटी को बेचने के लिए आगे कर दिया, जबकि ऑप्शन के लिए सेलिना हिल भी थी। देखा जाए तो लोन लेने और पैसे डुबाने में सबसे ज्यादा हाथ उस सेलिना हिल का ही है, और अब अपनी ही बेटी के ऊपर बेरहमी से पेश आने को कह रही है। दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ, वो औरत कुछ ज्यादा ही अजीब है, डोंट वरी, मैं इस बात का पता लगा लूंगा। बेटी किसी की भी हो, लेकिन अगर आपकी नज़र उसके ऊपर गई है तो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता,
मार्क ने जवाब दिया, जिसे सुनकर स्काई काफी हद तक संतुष्ट हो गया था। न जाने क्यों उसे आशिका में एक अलग ही कशिश नजर आती थी। पहले भी उसके आसपास और भी लड़कियां रहती थी, पर वो आशिका में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था। जिस तरह से वो उससे भाग रही थी, उसके बाद तो स्काई किसी भी हाल में उसे नहीं जाने देने वाला था। वहीं दूसरी तरफ एआर एम्पायर्स में अभिमन्यु और ऋषिका अभिमान से मिलकर जा चुके थे। आशिका को पूरा काम समझने में रात को काफी देर हो गई थी, और उतनी रात तक ऑफिस में अभिमान और अचित ही रुकते थे। हाँ, राघव कई बार उनके साथ होता था, लेकिन आज वो जा चुका था। आशिका अभी भी टेक लैब के अंदर थी, जबकि अभिमान और अचित अभिमान के केबिन में थे। आज वाकई अभिमान का मूड अच्छा था, क्योंकि पहले आशिका का काम करने के लिए हाँ कहना, तो बाद में ऋषिका और अभिमन्यु का उससे मिलने के लिए आना। चलो, इतने दिनों में पहली बार मैं तुम्हारा मूड अच्छा देख रहा हूँ, थोड़ा क्रेडिट तो मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आयश को दो बार मनाया है, रचित ने हल्के लहजे में कहा। हाँ, जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो इतनी देर तक काम क्यों कर रही है? रात के 11 बज रहे हैं, तुमने उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड अरेंज करवाया या नहीं? अभिमान ने पूछा। वो किसी भी हाल से आयश को नाराज नहीं करना चाहता था, ऊपर से उसने ज्यादा कुछ डिमांड भी नहीं किया था। हाँ, मैंने उसके लिए सनी और मोहित को अपॉइंट करने का सोचा है, लेकिन आज वे दोनों ही किसी काम के चलते जल्दी घर चले गए। दोनों भाई हैं, लगता है घर में कोई फंक्शन है, पर कल से वे दोनों ज्वाइन कर लेंगे। क्यों ना आज हम उसे ड्रॉप कर दें, इसी बहाने उसका घर भी देख लेंगे, रचित ने कहा। अभिमान ने हाँ में सिर हिला दिया था। वो आशिका से बात करने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक उसके मोबाइल की नोटिफिकेशन टोन बजी। जब अभिमान ने उसे चेक किया तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। तो आखिर उसने अपना आखिरी दांव खेल ही दिया, लेकिन सोचा नहीं था कि वो कामयाब हो जाएगी, अभिमान ने मैसेज देखकर कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आशुतोष सिंघानिया ने उसे मैसेज करके खुद घर पर बुलाया था। अब वजह क्या थी वो भी नहीं जानता था। सिर्फ आशुतोष ही अभिमान का चेहरा नहीं देखना चाहता था। अभिमान भी पिछले 16 सालों से उनके सामने जाने से बच रहा था।